एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो दिल दहला देने वाली है, लेकिन साथ ही ये इंसानी हौसले और यू नो वफादारी की एक मिसाल भी है। ये कहानी है लोन सर्वाइवर किताब की,
जी हाँ,
जो हमें नेवी सील्स की दुनिया में ले जाती है और उनके एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर।
बिल्कुल, और इसके लेखक हैं मार्कस लटरेल, वो खुद एक पूर्व अमेरिकी नेवी सील्स हैं। ये कहानी असल में उनकी अपनी आप बीती है, जून 2005 में अफगानिस्तान में हुए ऑपरेशन रेड विंग्स की।
ऑपरेशन रेड विंग्स, हाँ
हाँ, ये वो मिशन था जिसमें वो अपनी टीम के एकमात्र जीवित बचे सदस्य थे। तो ये किताब उस मिशन की त्रासदी, बहादुरी और मतलब जो मुश्किल नैतिक सवाल उठे, उनका एक कच्चा एकदम सीधा दस्तावेज है।
और ये कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक क्या कहते हैं फौजी ऑपरेशन का ब्यौरा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये पूछती है दोस्ती क्या होती है, बलिदान का मतलब क्या है, युद्ध के मैदान में वो जो सही और गलत के बीच की धुंधली लकीर होती है उस पर फैसले कैसे लिए जाते हैं, और शायद सबसे बढ़कर जब सब कुछ खत्म हो जाए तो जीने की वजह कैसे ढूंढी जाती है।
बिल्कुल, और ये सवाल मतलब आज भी उतने ही जरूरी हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी और सुरक्षा की एक कीमत होती है, एक मानवीय कीमत, जिसे कुछ लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। ये हमें मुश्किल हालात में इंसानी सहन शक्ति की हदें दिखाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं।
मार्कस लटरेल की कहानी टेक्सास से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं देशभक्ति रगों में दौड़ती है। उनका एक जुड़वां भाई था मॉर्गन, और बचपन से ही दोनों का एक ही सपना था।
क्या?
नेवी सील बनना। ये कोई ऐसी मामूली ख्वाहिश नहीं थी, ये एक जुनून था।
हाँ, और इस जुनून को शायद थोड़ी और हवा दी उनके पड़ोसी बिली शेल्टन ने। वो खुद एक अनुभवी सैनिक थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों में वो जिद और जज्बा देखा और उन्हें बहुत कम उम्र से ही मतलब अनौपचारिक तौर पर लेकिन बेहद सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया।
अच्छा, बचपन से ही?
जी हाँ, बचपन से ही। और शायद वहीं से वो कभी हार ना मानने वाली सोच, वो नेवर क्विट वाली मानसिकता उनके अंदर गहराई तक बैठ गई।
और यही सोच उन्हें 1999 में अमेरिकी नौसेना तक ले गई। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, BUDS ट्रेनिंग पास करके सील बनना।
हाँ, BUDS यानी बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग, और इसे मतलब दुनिया की सबसे मुश्किल सैन्य ट्रेनिंग्स में गिना जाता है। ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है,
नहीं
ना, ये उससे कई ज्यादा है। BUDS का सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हिस्सा है हेल वीक, नर्क का हफ्ता।
हेल वीक, सुना है इसके बारे में।
सोचिए, 5.5 दिन लगातार, और कुल मिलाकर शायद 4 घंटे की नींद भी नसीब नहीं होती। शरीर एकदम जवाब दे जाता है, दिमाग थककर चूर हो जाता है। लेकिन इसका असल मकसद है आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ना, आपके अहंकार को खत्म करना, और आपको ये सिखाना कि आप अकेले कुछ नहीं हैं। आप अपनी टीम पर, अपने साथियों पर पूरी तरह निर्भर हैं। यह आपको एक व्यक्ति से टीम के एक अटूट हिस्से में बदल देता है।
और लटरेल ने यह कर दिखाया। क्लास 228 से यह ट्रेनिंग पूरी की, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
बिल्कुल।
उन्होंने फिर कॉम्बैट मेडिक और स्नाइपर के तौर पर विशेषज्ञता हासिल की और फिर सील टीम 10 का हिस्सा बने। इराक और अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान उन्हें युद्ध की असलियत का अनुभव भी हुआ।
और यहीं से पृष्ठभूमि तैयार होती है ऑपरेशन रेड विंग्स की। साल 2005 जून का महीना, अफगानिस्तान का वो मुश्किल हिंदू कुश का इलाका।
हाँ।
मिशन था एक हाई वैल्यू तालिबान लीडर अहमद शाह, उसका या तो पता लगाना था या उसे निष्क्रिय करना था। एक बहुत ही खतरनाक मिशन जिसके लिए एक छोटी सिर्फ 4 सदस्यों की टीम चुनी गई।
सिर्फ 4 लोग? इस टीम में थे लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी जो टीम लीडर थे, मैथ्यू एक्सलसन दूसरे स्नाइपर, डैनी डीट्स संचार विशेषज्ञ, और खुद मार्कस लटरेल जो मेडिक भी थे और स्नाइपर भी।
जी।
और ये सिर्फ 4 लोग नहीं थे, ये अपने अपने काम में माहिर थे, युद्ध के मैदान में परखे हुए योद्धा जिनके बीच वो जो कहते हैं ना अटूट विश्वास और भाईचारा था।
हाँ, वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे और जानते थे कि उनका साथी भी उनके लिए यही करेगा। मिशन शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही एक अप्रत्याशित घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ही अभियान के दौरान टीम का सामना कुछ निहत्थे स्थानीय अफगान चरवाहों से हो गया, एक बूढ़ा आदमी और दो किशोर।
चरवाहों से मिशन के बीच में?
जी हाँ, और ये वो पल था जिसने मिशन की किस्मत एक तरह से तय कर दी।
और यहीं पर वो मुश्किल सवाल खड़ा हो गया, नैतिक दुविधा, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इन चरवाहों को जाने दिया जाए जिससे मिशन के सबके सामने आ जाने का पूरा खतरा था?
हाँ, कि वो जाके तालिबान को बता दें।
बिल्कुल।
या फिर उन्हें चुप करा दिया जाए, जो युद्ध के नियमों यानी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आरओई का सीधा उल्लंघन होता।
बिल्कुल।
ये नियम तय करते हैं कि सैनिक कब और कैसे बल प्रयोग कर सकते हैं, खासकर निहत्ते नागरिकों के मामले में।
और टीम के अंदर इस पर बहस हुई। लटरेल अपनी किताब में लिखते हैं कि सामरिक नजरिए से उन्हें खत्म करना शायद ज्यादा सुरक्षित होता, लेकिन लेफ्टिनेंट मर्फी ने उन्होंने आखिरकार उन्हें जाने देने का फैसला किया।
उन्होंने जाने दिया?
हाँ।
ये मानवीय आधार पर लिया गया फैसला था, आरओई का पालन करते हुए, लेकिन इसका नतीजा भयानक हुआ। कुछ ही घंटों में उन पर तालिबान लड़ाकों का एक बहुत बड़ा हमला हुआ।
हाँ, अनुमान है कि शायद 80 से 100 तालिबानी लड़ाकों ने उन चार सील्स को घेर लिया था। पहाड़ का वो मुश्किल इलाका, दुश्मन की भारी संख्या और कम्युनिकेशन की समस्या, हालात बद से बदतर होते चले गए।
बिल्कुल।
लेकिन उन चारों ने हार नहीं मानी, उन्होंने असाधारण वीरता से लड़ाई लड़ी।
हाँ, डैनी डीथ सबसे पहले गंभीर रूप से घायल हुए, फिर भी लड़ते रहे। मैथ्यू एक्सेलसन, एक बेहतरीन स्नाइपर, उन्होंने भी अंत तक मोर्चा संभाले रखा। और लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी, उनका बलिदान तो अकल्पनीय है। जब टीम पूरी तरह घिर चुकी थी, सब घायल थे और बेस से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था, तब मर्फी ने एक अविश्वसनीय कदम उठाया।
उन्होंने क्या किया?
वो जानबूझकर दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच एक खुली जगह पर गए, ताकि उनके सैटेलाइट फोन को सिग्नल मिल सके और वो मदद के लिए कॉल कर सकें।
खुली जगह में गोलियों के बीच?
जी हाँ, उन्हें पता था कि ऐसा करने में उनकी जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए ये जोखिम उठाया। वो कॉल करने में कामयाब रहे, लेकिन इस कोशिश में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं शहीद हो गए। उनके इस असाधारण साहस और बलिदान के लिए उन्हें बाद में अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया मरणोपरांत।
ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक लीडर का अपनी टीम के लिए ऐसा बलिदान। लेकिन दुखद बात यह है कि त्रासदी यही नहीं रुकी।
नहीं, मर्फी की कॉल के बाद एक बचाव दल भेजा गया, एक चिनूक हेलीकॉप्टर जिसमें 8 नेवी सील और 8 आर्मी नाइट स्टॉकर पायलट और क्रू सदस्य थे, कुल 16 लोग।
हाँ, मदद के लिए।
हाँ, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तालिबान ने उसे एक आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से मार गिराया।
नहीं।
हाँ, हेलीकॉप्टर में सवार सभी 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए।
तो उस एक मिशन में पहले डीट्स, एक्सेलसन, मर्फी और फिर बचाव दल के 16 सदस्य, कुल 19 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए।
जी, ऑपरेशन रेड विंग्स अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के इतिहास के सबसे काले, सबसे घातक दिनों में से एक बन गया। और मार्कस लैटरेल गंभीर रूप से घायल उस पहाड़ी पर अकेले बच गए थे।
अकेले?
हाँ, और यही वजह है कि उन्होंने ये किताब लिखी। जैसा वो कहते हैं, उनका मकसद अपनी कहानी सुनाना उतना नहीं था जितना अपने उन 19 शहीद भाइयों की कहानी दुनिया को बताना और उनके बलिदान को सम्मान देना था। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं है, ये उन मूल्यों की भी बात करती है जिनके सहारे ये सैनिक जीते और मरे। सबसे पहले आता है भाईचारा, ब्रदरहुड। ये शब्द हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सील्स के लिए इसका मतलब क्या है?
देखिए, सील्स के लिए भाईचारा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कह सकते हैं पवित्र बंधन है। ये उस साझा ट्रेनिंग की आग में तपकर बनता है। BUDS में वो सीखते हैं कि अकेले वो कुछ नहीं, टीम ही सब कुछ है। ये युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर जान लुटाने के भरोसे से मजबूत होता है। लटरेल कहते हैं कि वो सिर्फ साथी नहीं थे, वो एक परिवार थे, एक ऐसा परिवार जिसका बंधन मौत भी नहीं तोड़ सकती। शहादत के बाद भी वो उसी टीम का हिस्सा रहते हैं, ये बहुत गहरा रिश्ता है, समझ सकता हूँ। फिर आता है बलिदान, सैक्रिफाइस। मर्फी, डीट्स, एक्सेलसन और वो बचाव दल के सदस्य, उन्होंने जो किया वो इसका चरम उदाहरण है। दूसरों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए अपना जीवन दे देना।
बिल्कुल। और फिर कर्तव्य और सम्मान, ड्यूटी एंड ऑनर। ये सील लोकाचार यानी सील क्रीड का मूल है। कभी हार ना मानना, लड़ाई से कभी पीछे ना हटना, दुश्मन से ज्यादा मजबूत होना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। ये उनके लिए सिर्फ नारे नहीं है, ये जीने का तरीका है।
लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, युद्ध सिर्फ बहादुरी नहीं है, वो नैतिक जटिलता भी लाता है, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी। वो चरवाहों वाली घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना?
हाँ बिल्कुल। आरओई का पालन करें या मिशन और साथियों की जान बचाएं, ये एक क्लासिक मतलब दो बुराइयों में से कम बुरी चुनने वाली स्थिति थी। कोई आसान जवाब नहीं था। मर्फी ने नियमों और मानवीय मूल्यों को चुना, जिसका नतीजा सामरिक तबाही के रूप में सामने आया। लट्रेल ने बाद में इस फैसले पर सवाल उठाए, जो दिखाता है कि युद्ध के मैदान में किताबी नियमों और जमीनी हकीकत के बीच कितना ज्यादा तनाव हो सकता है। ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे नियम हमेशा सैनिकों की रक्षा करते हैं या कभी कभी उन्हें और बड़े खतरे में डाल देते हैं।
ये सोचने वाली बात है। और आखिर में वो जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति, विल टू सर्वाइव, जो ट्रेनिंग बर्ड्स में दी जाती है, वो शायद इसी दिन के लिए होती है। लटरेल की चोटें भयानक थीं, पीठ टूटी हुई, कई गोलियों के जख्म, डिहाइड्रेशन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
हाँ बिल्कुल, वो मानसिक दृढ़ता कमाल की थी, लेकिन इस जीवित रहने के साथ एक भारी बोझ भी आता है, सर्वाइवर्स गिल्ट, वो अपराध बोध।
मैं क्यों बच गया?
हाँ, मैं क्यों बच गया, मेरे साथ ही क्यों नहीं। ये अपराध बोध और अपने शहीद साथियों की कहानी बताने की जिम्मेदारी ये लटरेल को हमेशा सालती रहती है, जैसा वो लिखते हैं।
इस पूरी कहानी में अगर हम देखें तो वो तीन मोड़ कौन से थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया? पहला तो जाहिर है वो चरवाहों से सामना और उन्हें छोड़ने का फैसला।
बिल्कुल, वो एक निर्णायक क्षण था। उस एक फैसले ने, जो नैतिक रूप से शायद सही था, मिशन को सीधे तबाही के रास्ते पर डाल दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक पल में लिए गए फैसले के कितने दूरगामी और मतलब विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, खासकर युद्ध जैसी स्थिति में।
दूसरा निर्णायक मोड़ था लेफ्टिनेंट मर्फी का वो आखिरी कॉल करने का फैसला।
हाँ, वो आत्म बलिदान का चरम था। उस कॉल के बिना शायद लिटरेल कभी नहीं बच पाते। मर्फी का वो कदम न सिर्फ एक लीडर के साहस को दिखाता है, बल्कि उस भाईचारे को भी दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां एक साथी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की जाती। वो कॉल सीधे तौर पर लिटरेल के बचने का कारण बनी।
और तीसरा मोड़, जो शायद सबसे अप्रत्याशित था, मोहम्मद गुलाब का मिलना।
हाँ, ये कहानी का वो हिस्सा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लिटरेल पूरी तरह घायल थे, अकेले थे, तालिबान से छिपते छिपाते मौत के कगार पर थे, और तभी उन्हें एक स्थानीय पश्तून ग्रामीण मोहम्मद गुलाब ने ढूंढ लिया।
और वो इलाका तो तालिबान का घर था।
बिल्कुल, गुलाब आसानी से उन्हें तालिबान के हवाले कर सकता था या मार सकता था, इनाम भी मिलता शायद।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्यों?
क्योंकि गुलाब ने पश्तून वाली का पालन किया। ये पश्तूनों की सदियों पुरानी सम्मान संहिता है। इसके तहत अगर कोई आपके दरवाजे पर मेहमान बनकर आता है या पनाह मांगता है, उसे मेलमा कहते हैं, तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है, हर कीमत पर, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो।
दुश्मन की भी रक्षा?
जी हाँ, गुलाब और उसके गांव वालों ने तालिबान की धमकियों और खतरों के बावजूद कई दिनों तक लिटरेल को छुपाए रखा, उनकी देखभाल की, और आखिरकार अमेरिकी सेना तक उनकी खबर पहुंचाई।
ये तो अविश्वसनीय है, युद्ध की इस भीषण क्रूरता के बीच मानवता की ऐसी मिसाल।
यही इस कहानी को और भी गहरा बनाती है। ये दिखाती है कि अच्छाई और सम्मान किसी एक संस्कृति या गुट तक सीमित नहीं है। ये बुनियादी मानवीय मूल्य हैं जो कहीं भी किसी भी इंसान में मिल सकते हैं। गुलाब ने अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डालकर एक दुश्मन सैनिक की जान बचाई, सिर्फ अपनी परंपरा और जमीर की आवाज़ सुनकर।
तो इस पूरी दास्तान से हम आम इंसान क्या सबक ले सकते हैं? एक तो शायद यही कि अत्यधिक दबाव में हमारे असली मूल्य सामने आते हैं, जैसे मर्फी के फैसले में दिखा।
सही कहा। और टीम वर्क की ताकत, ये सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया का शब्द नहीं है, है ना? सेल टीम दिखाती है कि जब लोग साझा लक्ष्य और अटूट भरोसे के साथ काम करते हैं तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है।
और वो मानसिक दृढ़ता वाली बात, बर्ड्स की ट्रेनिंग और फिर लिटरेल का अकेले जिंदा बचना, ये दिखाता है कि इंसान मुश्किलों का सामना करके कितना लचीला बन सकता है।
बिल्कुल, ये जानबूझकर खुद को मुश्किलों में डालने, जिसे डेलिब्रेट हार्डशिप कहते हैं, उसका सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करने से ही हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।
मोहम्मद गुलाब की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद ये कि हमें लोगों को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, खांचों में नहीं बांटना चाहिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी सबक है। अक्सर हम पूरे समूह या समुदाय को एक ही नजरिए से देखने लगते हैं, खासकर संघर्ष के समय। लेकिन गुलाब का कदम दिखाता है कि हर व्यक्ति अलग होता है और मानवता किसी सीमा या पहचान की मोहताज नहीं होती। ये हमें दूसरों को समझने और उनके कल्चर का सम्मान करने की प्रेरणा देता है।
और आखिर में ये कहानी हमें आघात यानी ट्रॉमा और नुकसान यानी लॉस से जूझने के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। वो सर्वाइवर्स गिल्ट, यादों का बोझ और उन लोगों को याद रखने का तरीका जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया।
हाँ,
ये हमें उन सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान की ज्यादा गहरी समझ और सराहना देती है। ये याद दिलाती है कि हम जिस आज़ादी को कई बार बहुत हल्के में ले लेते हैं, उसकी एक भारी कीमत चुकाई गई है और चुकाई जा रही है।
इस गहरी और सच कहूं तो काफी भावनात्मक यात्रा के बाद अगर तीन मुख्य बातें निकालनी हो इस कहानी से तो वो क्या होंगी?
मेरे लिए पहली एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि ये है कि सबसे गहले इंसानी रिश्ते, वो जो सबसे मजबूत बंधन होते हैं, वो अक्सर साझा दुख और बलिदान की भट्टी में ही बनते हैं। सील्स का भाईचारा दिखाता है कि टीम के प्रति वफादारी और एक दूसरे का साथ निभाना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकतों में से है।
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि शायद ये है कि युद्ध की हकीकत नैतिक रूप से बहुत पेचीदा होती है, बहुत जटिल। बनाए गए नियम जैसे आरओई अक्सर जमीनी सच्चाई, अप्रकाशित हालात और मानवीय भावनाओं से टकराते हैं, और इस टकराव के नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, जैसा हमने चरवाहों वाली घटना में देखा। यह हमें सिखाता है कि दुनिया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे एरियाज होते हैं।
बिल्कुल। और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि हो सकती है कि इंसान की जीने की इच्छा शक्ति कमाल की है, असाधारण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि इंसानियत, करुणा और सम्मान जैसे गुण वो सबसे मुश्किल और अप्रत्याशित जगहों पर भी मिल सकते हैं। मोहम्मद गुलाब और पश्तून वाली की मिसाल दिखाती है कि अच्छाई मुश्किल हालात में भी जिंदा रहती है और पनप सकती है।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये इंसान के हौसले, नैतिकता के द्वंद्व और मानवता की उस अप्रत्याशित चमक की कहानी है जो अंधेरे में भी दिख जाती है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है, अगर हम ऐसी परिस्थितियों में होते तो हम क्या करते?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए इकट्ठा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।